الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام اسلام مذہب میں جو بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں ایک بہت بڑی خوبی امانت ہے. امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی دوسرے آدمی کی کوئی چیز ہمارے پاس ہو تو اس کو پورے پوری واپس پہنچا دینی چاہیے. کسی نے آپ کے پاس مال رکھا تھا کہ میں ذرا فورن ٹریولنگ میں جا رہا ہوں, میرے پیسے, میری گاڑی, میرا بنگلہ میں تجھ کو سونپ کے جاتا ہوں, تو جب وہ آ کر کے مانگے تو پورے پوری اس کی امانت, اس کے پیسے, اس کی گاڑی, اس کا مکان اس کو واپس کر دینا, یہ امانت کہلاتا ہے. کسی کا مکان یا دکان کرائے پر, لیز پر لیا اور وہ ہمارے پاس خالی کرواوے تو اس کا مکان اور اس کی دکان, اس کا پلاٹ, اس کا گوڈاؤن پورے پورا اس کو واپس دے دینا, یہ امانت داری کہلاتی ہے. کسی نے آپ کو کوئی بات کہی کہ یہ بات اپنے تک پرائیویٹ میں رکھنا, तो उसकी बात को अपने पेट में रखो, अपने दिल में रखो, दूसरों को मत कहो, ये अमानतदारी कहलाती है। अपनी जात के साथ भी अमानतदारी है कि ये बॉडी अल्लाह की अमानत है, ये हेल्थ तंदुरुस्ती अल्लाह की अमानत है, हमारी बॉडी को हमारे हेल्थ को नुकसान होवे ऐसी चीजों से बचाना ये अमानतदारी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक आदमी तंबाकू गुटखा खाता है, सिगरेट बीड़ी पीता है और डॉक्टर लोग कहते हैं कि इससे हेल्थ को बड़ा नुकसान होता है, तो ये तंबाकू गुटखा मावा सिगरेट बीड़ी इस्तेमाल करना ये खियानत है, अमानतदारी के खिलाफ है। अमानतदारी ये है कि हमारी हेल्थ को हमारी तबीयत को नुकसान होवे ऐसी चीज खाने पीने से अपने आप को बचाओ, ये अमानतदारी कहलाती है। अपनी औलाद है, औलाद को अच्छी तालीम दो, औलाद के लिए नेक दुआ करो, ये अमानतदारी कहलाती है। अगर औलाद को गलत तालीम देंगे, औलाद के लिए बद्दुआ करेंगे, तो ये खियानत कहलाती है, अमानतदारी के खिलाफ है। तो हमारे दीन के अंदर अमानत बहुत बड़ी चीज है। जनरली लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ माल और पैसे में अमानत है, ये छोटी सी बात है, अमानत तो बहुत बड़ी चीज है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया के ला ईमान लिमल्ला अमानत ला, जिसने अमानत छोड़ दी खियानत की तो ऐसे आदमी का ईमान ही नहीं है। कितनी सख्त बात फरमाई, जुमा के खुतबे के अंदर हम सुनते हैं ये हदीस, आम तौर पर खुद दूसरे खुतबे में पहले खुतबे में पढ़ी जाती है, लेकिन हमारी हालत ऐसी है कि जुमा के खुतबे में हम हमारी नींद का कोटा पूरा करते हैं, इसीलिए इमाम साहब क्या पढ़ते हैं इमाम साहब जाने नहीं, इमाम साहब के अल्लाह जाने। दूसरी बात, अगर जागते भी होंगे तो हमको अंग्रेजी आती है, चिचिवा आती है, लेकिन अरबी नहीं आती, जो जन्नती लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए वो ही नहीं सीखी कि अल्लाह के नबी की हदीस हम समझे, कुरान समझे। तो ये हदीस आम तौर पर खुतबे में पढ़ी जाती है, ला ईमान लिमल्ला अमानत ला, जो आदमी अमानतदार नहीं है उसके पास ईमान ही नहीं है। इतनी सख्त बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इसलिए आज से ये तय कर लो कि इंशाल्लाह अमानतदारी वाली जिंदगी गुजारेंगे, खियानत से अपने आप को बचाएंगे। किसी के पैसे हमारे पास है, पहली फुर्सत में उसको दे दो। किसी का मकान दुकान हमारे पास है और वो खाली करावे तो उसका शुक्रिया अदा करो और खाली करके दे दो। शुक्रिया ये अदा करना कि तुमने इतने साल तक हमको रहने दिया, आपका शुक्रिया। अब आप मांगते होले मैं आपको मकान दे देता हूं, दुकान वापिस कर देता हूं। ये अमानतदारी है। किसी ने आपको कोई बात सीक्रेट बतलाई तो उसको अपने तक रखो, किसी को मत कहो, ये अमानतदारी है। अपनी हेल्थ को नुकसान देने वाली खाने पीने चीज से बचाओ, ये अमानतदारी है। इसीलिए आपको मसला मालूम है, कोई आदमी सुसाइड करेगा तो जहन्नम की आग में डाला जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी बॉडी है मैं जो चाहे करूं, ये तेरी बॉडी नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है, तू सुसाइड करेगा तो अल्लाह तुझे जहन्नम में डाल देंगे। अपनी औलाद के साथ अमानतदारी करो कि उनको दीन की तालीम दो, औलाद के लिए अच्छी दुआ करो। औलाद को गलत तालीम दोगे, बददुआ करोगे, तो ये औलाद के हक में बड़ी खियानत कहलाएगी। और आपने हदीस सुन ली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्त बात फरमाई, ला ईमान लिमल्ला अमानत ला, अमानत नहीं तो ईमान नहीं। बल्कि कुरान की एक आयत तो ऐसी है कि वो काबा शरीफ के अंदर उतरी। जब मक्का फतह करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, काबा शरीफ के अंदर गए, काबा के अंदर जाके नमाज पढ़ी, जिब्राइल अमीन कुरान की आयत लेके आए, काबा के अंदर ये आयत उतरी। और हुजूर जब दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं तो नूरानी मुबारक जबान के ऊपर ये आयत थी, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह हुक्म देते हैं कि तुम अमानत को अमानत के मालिक को वापिस पहुंचा दो। ये अल्लाह का हुक्म है। इसलिए मेरे ईमान वाले भाइयों, अमानत के मामले में बहुत एक्टिव रहो, बहुत चौकन्ना रहो, बहुत चौकस रहो कि हमारी जात से किसी की खियानत न होने पावे। मैं एक दो अजीब किस्से आपको सुनाता हूं। हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती अब्बास साहब दामत बरकातहुम ने एक अजीब किस्सा सुनाया। हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सेहारवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे और फ्रीडम फाइटर थे। इंडिया की जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसके वो बड़े फ्रीडम फाइटर थे। और इंडिया फ्री होने के बाद जो फर्स्ट पार्लियामेंट बनी उसके भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी और बाद में प्रेसिडेंट भी रहे और बहुत उन्होंने काम किए हैं दीन के, मिल्लत को बचाने के। 1947 15 अगस्त को जब इंडिया फ्री हुआ है तो उस वक्त पर मुसलमानों के ऊपर जो हालात आए उसमें मौलाना ने बहुत कुर्बानियां दी, रात दिन एक करके मुसलमानों को बचाने का काम किया। हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े साहिब निस्बत खानकाह के बुजुर्ग हैं। फजाइल आमाल हजरत शेख मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी बातें नकल करते हैं। तो हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े ऊंचे दर्जे के बुजुर्ग हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब को यूं कहते थे कि मौलाना 1947 में 15 अगस्त के बाद आपने मुसलमानों को बचाने के लिए जो रात दिन एक करके मेहनत की उन रातों में से एक रात का सवाब मुझे दे दो, मैं अपनी पूरी जिंदगी की खानकाह का सवाब आपको देने के लिए तैयार हूं, ऐसा कहते थे। ऐसी उन्होंने कुर्बानी देकर के मुसलमानों को मुल्क में बचाया। और पार्लियामेंट में खड़े होते थे तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी पार्लियामेंट के अंदर डांटते थे और उसको भी जो है जोरों शोर से झाड़ देते थे। खैर ये एक मुस्तकिल टॉपिक है, वो मैं वहां बयान करता हूं, ये तो एक बात याद आ गई। तो हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहारवी रहमतुल्ला अलैह बड़े अजीब व गरीब आदमी थे। एक मर्तबा किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, रास्ते के अंदर कहीं उनका ये कुर्ता फट गया और किसी बड़े प्रोग्राम में जाना था। तो एक उनके खास ताल्लुक वाले थे, उनकी दुकान थी, उस दुकान के ऊपर गए। दुकान के ऊपर ये टेलर लोगों का जो मटेरियल होता है वो बिकता था, टेलरिंग काम का। तो उनको कहा कि टेलरिंग काम के अंदर जो दोरे इस्तेमाल होते हैं उसके गोल गोल जो है बॉबिन होते हैं, रील होती है, तो कहा एक रील लाओ और एक सुई लाओ, मैं जल्दी से कपड़ा अपना यहां ठीक कर दूं, बड़े प्रोग्राम में जाना है, घर बदलने जाने का टाइम नहीं है। तो वो दुकान का जो मालिक था मौलाना का बहुत अच्छा चाहने वाला, दोस्ती रखने वाला, उसने दुकान के अंदर जो नए पूरे रील रखे हुए थे उसमें से एक निकाला, एक सुई दी और मौलाना ने वहीं दुकान के ऊपर खड़े खड़े अपने हाथ से कुर्ते के टांके मार लिए और कुर्ता ठीक कर लिया। और उसके बाद मौलाना रेलवे स्टेशन जाने लगे, ट्रेन पकड़नी थी, आगे कोई बड़े प्रोग्राम को अटेंड करना था। वो दुकान का मालिक मौलाना का दोस्त, उसने वो जो मौलाना ने इस्तेमाल किया वो एक साइट पर रख दिया। मौलाना ने उसको कहा भाई ये क्या कर रहे हो? तो कहा हजरत अब पूरी बात मैं आपको जल्दी जल्दी में कैसे बताऊं, आपको ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन पहुंचना है, प्रोग्राम में देर हो रही है, तो कहा बतला दो। तो उन्होंने कहा कि ये जितना भी माल रखा हुआ है ये सब नया माल है, पैक माल है, और ये जो मैंने आपको दिया उसमें से आपने एक दो मीटर डोरी दोरा इस्तेमाल किया और अपने कुर्ते को ठीक किया, इसीलिए मैं अब इस रील को नए माल के साथ पैक माल के साथ नहीं रख सकता, ये अमानतदारी का तकाजा है। अगर मैं इसको यहां रखूंगा और कस्टमर आवे और मैं नए माल के साथ उसको बेच दूंगा तो ये खियानत कहलाएगी और अल्लाह ताला को खियानत पसंद नहीं है। देखो कैसे लोग कि पूरा जो वो दोरे का आपने टेलर के यहां देखा होगा उसमें से एक मीटर खाली इस्तेमाल किया लेकिन कहा कि अब मैं उसको न्यू माल के साथ पैक माल के साथ नहीं रखूंगा, उसको साइट पे रखूंगा, कोई कस्टमर आएगा तो मैं कहूंगा ये अधूरा है, तुझे लेना हो तो उसकी जो मैक्स प्राइस है उसमें एक दो रुपये कम करके ले जाना हो तो ले जा, मैं उसको नए माल के साथ नहीं रखूंगा। ऐसी अमानतदारी के साथ उसकी जिंदगी गुजरती थी। अल्लाह ऐसी अमानतदारी मुसलमानों को अपने करम से अता फरमा दे। आज खियानत हमारी जिंदगी में बहुत आम है, उसकी बरकत सुनो। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो जो टेलरिंग मटेरियल की जो दुकान थी जिनका मैंने अभी आपको किस्सा सुनाया, वो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी आग लगी और लोग परेशान, फायर ब्रिगेड वाले आए, वो भी आग को कंट्रोल नहीं कर सकते। लोगों ने कहा कि भाई एक दुकान जल गई, दूसरी दुकान जल गई, तीसरी दुकान जल गई, तो उसको भी कहा कि भाई तू भी तेरी दुकान जल्दी जल्दी खाली कर, हम तेरी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, दुकान खाली करो वरना तेरी दुकान भी पूरी जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा कि मुझे दुकान खाली करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी दुकान ऐसी ही रहने दो। तो लोग कहने लगे कि ये आदमी कैसा है, या तो पागल है या तो कोई बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है, दो में से एक ही है। उसको समझा रहे हैं लोग कि देखो तीन दुकान जली, चार दुकान जल गई, अभी आगे जलते जलते मार्केट में तेरी दुकान का नंबर भी आएगा, तू खाली कर। तो कहा नहीं, मुझे खाली नहीं करना है। और फिर उसने लोगों ने बहुत उसको प्रेशर किया तो कहने लगा इंशाल्लाह मेरी दुकान नहीं जलेगी, मेरी दुकान को कुछ नहीं होगा। जलती रही एक के बाद एक के बाद एक दुकान, यहां तक कि उसके बाजू वाली दुकान में भी आग लग गई। अब लोग उसको प्रेशर कर रहे हैं, अरे भाई तेरे बाजू में आग आ गई, अब तो दुकान खाली कर। उसने कहा कि नहीं, बल्कि लोगों का प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो अपनी दुकान में घुस गया और दुकान का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब बाजू वाली दुकान आधी पौनी जल गई तो लोग दरवाजा ठोकने लगे कि अरे तू तो बाहर निकल वरना दुकान जलेगी, तू भी जल जाएगा, तू तो कम से कम बाहर निकल जा, तू अपना माल नहीं निकालता तो कम से कम तू तो बाहर निकल जा ताकि तेरी जान बच जावे। उसने कहा कि मैं नहीं निकलने का, अंदर ही रहूंगा मैं, और इत्मीनान से आराम से बैठा रहा। अल्लाह की कुदरत के बाजू वाली दुकान पूरी जल गई और अब उसकी दुकान का नंबर था कि अचानक आग ठंडी हो गई, बुझ गई, आग खत्म हो गई। सारे लोग हैरान कि ये क्या हो गया। फिर उसने इत्मीनान से दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके लोगों को कह रहा है कि देख लिया तुम लोगों ने मंजर का, बात दरअसल ये है कि मैंने अपनी दुकान आज तक चलाई है पूरी अमानतदारी के साथ, कभी मैंने अपनी दुकान के अंदर जर्रा बराबर भी खियानत नहीं की है, और उस अमानतदारी की वजह से मुझे यकीन था कि मेरी दुकान के अंदर आग नहीं लगेगी। फिर उसने कहा कि अमानतदारी के साथ साथ मैं पूरा हिसाब करके पूरी ज़कात निकालता हूँ, सदकतुल फितर निकालता हूँ, नफिल सदका खैरात करता हूँ, और उसकी बरकत से मुझे यकीन था कि पूरा मार्केट भी जल जावे तो अभी मेरी दुकान को आग लगने वाली नहीं है। ये अमानत की बरकत। इसीलिए मेरे ईमान वाले भाइयों, हमारे अंदर अमानतदारी आवे, ये अमानतदारी हमें पैदा करना बहुत जरूरी है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हदीस में फरमाया ला ईमान लिमल्ला अमानत ला, जिसमें अमानत नहीं उसका ईमान ही नहीं है। कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई, जहां भी हम रहे अमानतदारी के साथ रहे। एक न्यूज़पेपर में एक मुसलमान का किस्सा पढ़ा था, वो मैं आपको सुना। आपने नाम सुना होगा, जो लोग न्यूज में एक्टिव रहते हैं इंडिया में, अभी नियर पास्ट टाइम में प्रेसिडेंट है मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था। डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, मुसलमान थे, बहुत अच्छी जिंदगी उनकी रही है। वो तो मिसाइल मैन बने और एटम के बड़े स्पेशलिस्ट थे, इसीलिए उनको कंट्री का प्रेसिडेंट बनाया गया। बड़े साइंटिस्ट थे, ऊंचे दर्जे के। 24 नवंबर 2022 गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है जिसका नाम है गुजरात समाचार। बॉम्बे से, सूरत से, अहमदाबाद से, राजकोट से, बहुत सारी सिटी से वो न्यूज़पेपर निकलता है, बहुत लार्ज कवरेज रखता है। उस न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है डॉक्टर अब्दुल कलाम के मुताल्लिक कि एक मुसलमान जहां भी रहे कैसी अमानतदारी के साथ रहे। तो ये हिंदू न्यूज़पेपर ने ये आर्टिकल छापा है, मैंने तारीख के साथ आपको रेफरेंस दिया है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे तो उस जमाने के अंदर उनके बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त लोग उनकी मुलाकात के लिए न्यू दिल्ली आए और अबाउट वो 50-60% थे, 50-60 आदमी थे, वो लोग ट्रेन से न्यू दिल्ली पहुंचे तो प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब काम में बिजी थे तो रेलवे स्टेशन उनको वेलकम करने जा नहीं सके और जाना भी मुश्किल चूंकि प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल इतना होता है कि वो जावे तो कैसे जावे। तो उन्होंने अपने ऑफिस स्टाफ को रेलवे स्टेशन के ऊपर भेजा कि जाओ मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं उनका वेलकम करके ले आओ। लेकिन अब ये समझने की बात है, अपने स्टाफ को, अपने ऑफिस सेक्रेटरी को बुलाया और बुला करके कहा कि ये मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, ये मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, मेरे मेहमान हैं। जितने दिन ये लोग प्रेसिडेंट हाउस में जो गेस्ट रूम है उसके अंदर वो लोग रहेंगे, इतने दिन का किराया और भाड़ा मुझसे वसूल करना है, मेरे प्राइवेट अकाउंट से वसूल करना है। हालांकि प्रेसिडेंट के जो भी गेस्ट आए, न्यू दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति भवन है उसमें बहुत आलीशान गेस्ट हाउस है, मुगल गार्डन है, शानदार गेस्ट हाउस है, प्रेसिडेंट के जो भी गेस्ट आवे वो वहां रहते हैं। लेकिन एक मुसलमान की अमानतदारी देखो कि ये जो गेस्ट आ रहे हैं मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो जितने दिन तक गेस्ट रूम में रहेंगे हिसाब करो और उसका भाड़ा, उसका किराया मैं दूंगा, अलग से मैं दूंगा। दूसरी बात ये कही कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स को लेने के लिए जो कार जाएगी वो रेंटल कार होगी, प्रेसिडेंट हाउस की जो कार है वो कार नहीं जाएगी, बाहर से टैक्सी करो और टैक्सी के जरिए मेरे रिश्तेदारों को लाओ और उनको दिल्ली में जहां भी जाना हो टैक्सी करके भेजो और जो कुछ भाड़ा हो उसका हिसाब करो, वो भी मैं अदा करूंगा। और वो लोग यहां रहेंगे प्रेसिडेंट हाउस में, खाना खाएंगे तो खाने का हिसाब भी अलग लगाओ, मैं उसके पैसे अदा करूंगा। अबाउट 3 वीक वो लोग मेहमान रहे और मेहमान रहने के बाद वो लोग वापस गए। प्रेसिडेंट साहब ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि चलो पूरा हिसाब करो, मेरे मेहमान जितने दिन रहे इनका रहने का भाड़ा कितना, उनका टैक्सी का भाड़ा कितना, उनका खाने का खर्चा कितना, तो 3,54,924 रुपये इंडियन करेंसी के अंदर हुए। वो मिस्टर अब्दुल कलाम ने अपने प्राइवेट अकाउंट में से गवर्नमेंट के अंदर जमा करवाए और जमा कराने के बाद कहा हमारा दीन हमको यही सिखाता है, ये हमारे दीन की तालीम है कि मैं प्रेसिडेंट हूं लेकिन मेरे रिश्तेदार, मेरे मेहमान जो होंगे उनका खर्चा मैं उठाऊंगा, मैं उसको गवर्नमेंट के खर्चे से खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहीं। इसको अमानतदारी कहते हैं। मुसलमान जहां भी रहे, किसी पोस्ट पर रहे, मस्जिद की पोस्ट हो, मदरसे की पोस्ट हो, या किसी कमेटी या किसी इदारे की पोस्ट पर हो, वहां पूरी अमानतदारी के साथ یہ ہمارا دین ہم کو سکھلاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. اللہ مجھے آپ کو پوری امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ضروری ہے. اس زمانے کے اندر خیانت عام ہے، اوپر سے نیچے تک خیانت ہو رہی ہے. ایسے زمانے میں ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے امانت داری کا ثبوت دیوے کہ امانت داری کے ساتھ ہم زندگی گزارنے والے بنے. اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمارے اندر پیدا فرما دے رہے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی ہونے کا اعلان ہوا، اس سے پہلے پورے مکہ کے لوگ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ صادق الامین. حالانکہ ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا، 40 سال کی زندگی مکہ والوں میں ایسی گزاری کہ پورے مکہ والے کیا کہتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تو محمد ابن عبداللہ کہتے تھے، چونکہ حضور کے نبی ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا. محمد ابن عبداللہ کے میننگ محمد سن آف عبداللہ، چونکہ حضور کے ابا کا نام عبداللہ تھا، تو کہا یہ محمد ابن عبداللہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، سچائی اور امانت والی زندگی گزارتے ہیں. پورے مکہ میں عورتیں، بچے، مرد سب جانتے تھے کہ یہ سچے اور امانت دار ہیں. اللہ یہ دونوں خوبی ہمارے اندر پیدا کر دے. رمضان کی مبارک راتیں چل رہی ہے، نیت کر لو، اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ ہمیں سچائی عطا فرماؤ، اے اللہ ہمیں امانت داری عطا فرماؤ. ایسی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین.